You're listening to a Hindustan Times podcast brought to you by HT Smartcast.
It's Hindustan Times' main podcast on politics, and what we are going to focus on in the second season is the run-up to the 2024 elections, when Narendra Modi is going to seek a third term. Now, as we know, it is a crucial election where you've also got a very powerful opposition alliance, that's the India Alliance. And to talk about what are the factors that are going to impact this election, I have a key lawmaker with me, Bharatiya Janata Party's MP from Bihar, Sushil Kumar Modi. Now, Sushil Kumar Modi is not just the former Deputy Chief Minister of Bihar, he is also the Standing Committee Chairperson on Law. Now, that's looking at crucial issues like the Uniform Civil Code, which I'm told is obviously going to impact the 2024 elections as well. So, Sushil Kumar Ji, thank you so much ki aap Hindustan Times mein aaye aur humse baatcheet kar rahe. Sir, main sabse pehle aapse ek aise vishay ke bare mein baat karna chahungi जो कि हम आपके राज्य में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और इसके बारे में ऑपोजिशन इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं 24 के बारे में, वो है कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे जो वो कह रहे हैं उसको. तो अभी वहाँ पे सारा काम हो चुका है, अब बस उसके क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, उसमें क्या निकला वो बताने वाले. तो आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे?
देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के पक्ष में बिहार की विधानसभा में और इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड ट्वाइस एंड इट वाज अ यूनिनियस डिसीजन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड बीजेपी वाज अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन. सो नंबर वन, वॉट एवर डिसीजन इज बीन टेकन रिगार्डिंग कास्ट सेंसस, बीजेपी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट डिसीजन. और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते जिस कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया उसमें बीजेपी के 14 मिनिस्टर्स थे. तो अगर बीजेपी कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं होती तो बिहार मंत्रिपरिषद जो है वो ये निर्णय नहीं ले सकता था. इसके अतिरिक्त जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया दिल्ली में मिलने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो वन ऑफ द की मिनिस्टर ऑफ बीजेपी वॉज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन. मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आरजेडी जेडीयू दे वो उनको ये लगता था कि बीजेपी विरोध करेगी, लेकिन बीजेपी ने विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया. वो चाहती थी कि बीजेपी को एंटी बैकवर्ड हैं ये हम ब्रांड कर सकें, और इसलिए अब हाईकोर्ट में किसने पीआईएल फाइल किया, नोबडी, वी डोंट नो हु आर द पर्संस हु फाइल पीआईएल, बट दे विल इशू स्टेटमेंट दैट बिहाइंड दोज पीपल इट इज बीजेपी and BJP does not want caste survey. So this is not true. And only 2 days back, when Mr. Tushar Mehta or the government of India filed their affidavit, at that time also, in Bihar, JDU, RJD, they make an hue and cry why they have filed an amended affidavit in the Supreme Court. So I'm going to tell you one thing to the audience, that BJP's approach is that central government कास्ट सेंसस नहीं करा सकती है. इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू हैव अ कास्ट सेंसस बाय द यूनियन गवर्नमेंट. लेकिन अगर कोई राज्य सरकार अगर करना चाहती है तो दे आर फ्री टू डू. कर्नाटका में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ, बीजेपी ने समर्थन किया था.
सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है. आप कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है.
नहीं कर सकती, इसलिए
2011 में हुआ था.
नहीं नहीं, दैट वाज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस,
जिसमें सेंसस का पार्ट एक क्वेश्चन था कि आपका कास्ट क्या है.
लेकिन वो आज तक डेटा रिलीज नहीं हुआ. उसका कारण ये है कि मोर देन 30 लाख वर कास्ट वर इनुमरेटेड, यानी बिहार देश में इतनी जातियां हैं, टाइटल हैं, गोत्र हैं, घर बाकी चीजें हैं, तो इतना मुश्किल काम है कि 30 लाख से ज्यादा जातियों की लिस्ट उसके अंदर इनुमरेट हुई जो है. और 1951 में ही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एक निर्णय लिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल एससी एसटी का ही कास्ट सेंसस करेगी, ओबीसी का कास्ट सेंसस नहीं करेगी. वो आज तक चला आ रहा है. तीसरे 2011 में जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ वो पूरी तरह से फेल कर गया, इसलिए आज तक वो डेटा रिलीज कोई भी सरकार नहीं कर पाई. तो तो इसलिए मैंने ये स्पष्ट किया कि कास्ट सेंसस जो
क्योंकि है बहुत बड़ा है आपका कहना
नहीं इतना बड़ा देश है इतनी भीड़ जातियां हैं तो फिर आप किसी
मतलब
गांव में
छोटे लेवल पे कर सकते हैं
यानी स्टेट लेवल पर
तो बिहार वाला यू आर सेइंग दैट वी आर टोटली
यस बट इट इज फॉर द स्टेट्स टू डिसाइड इट इज नॉट दैट बीजेपी विल एवरी स्टेट विल हैव अ कास्ट सेंसस इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड
नो बट सर the confusion you are saying we are completely for it and it is because of the BJP's point of view that they are having also BJP supported it in Bihar but sir the confusion about BJP and the kind of you can see them dithering ki wo kabhi ha kabhi na ye ki wo subah unhone supreme court mein kaha ki nahi state government nahi kar sakti bilkul aapka vipreet matlab ekdam opposite wo log unhone kaha fir unhone sham ko usi affidavit ko change kar diya और कहा और वो वाला जो भाग था उसमें वो सेक्शन था वो उसको हटा दिया तो डजंट इट शो द
रियल डजंट शो द डिथरिंग इट वाज इनएडवर्टेंटली क्रेप्ट इन द ड्राफ्ट
सो इट इज समथिंग सो
नो बट व्हाट इज द फाइनल ड्राफ्ट दैट इज इंपॉर्टेंट
इट्स क्वाइट
अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड व्हाट इज द फाइनल ड्राफ्ट द फाइनल स्टैंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सो कि सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली बाय द यूनियन गवर्नमेंट according to the constitution according to the census act 1948
that census can also be can only be you know conducted by the union government doesn't it also in some ways show the opposition to this caste survey
no it does not show because no? Nitish Kumar also says that this is not census
he calls it survey
this survey
ji
and earlier also in the state of Telangana they are conducted 2014 or 16 don't remember the exact year They conducted this caste survey. And देखिए जब भी caste survey होता है तो केवल caste नहीं होता है एंड वी आर ऑन 17 पैरामीटर्स सोशियो इकोनॉमिक पे यू आर हैविंग टी वी और नॉट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग तो इस सारे ताकि एक कम्युनिटी के भीतर लिटरेसी की क्या स्थिति है उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है ये पूरी जानकारी मिल सके और प्लानिंग करने में सुविधा हो सकती है तो यही इसका मोटो रहा इसलिए बीजेपी इज इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस बट इट इज फॉर द स्टेट्स टू डिसाइड
ये काफी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग है क्योंकि हम लोगों ने कई बार ऐसे कुछ नेता देखे हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रीतम मुंडे सर जो कि बीजेपी की सांसद है महाराष्ट्र से वो भी ओबीसी नेता है उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं उनको भी कोई रिस्पॉन्स तब हम सेंटर से कुछ सुन नहीं रहे थे तो सेंटर में जैसे आप क्लियरली बोल रहे हैं कि We support it, but at the state level, that kind of a clear stand, शायद सुनने को नहीं मिल रहा है. Why is that?
ना ये तो मैं नहीं बता सकता
जैसे पीतर मुंडे को भी किसी ने कुछ
नहीं नहीं देखिए जैसा कांग्रेस ने अभी जाकर पहली बार कहा कि कास्ट सर्वे होना चाहिए लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट जो है उसमें हिमाचल में कहां हुआ राजस्थान में 5 साल हो गया सरकार को
अभी शायद खरगे जी ने
कहा अनाउंस किया लेकिन सिद्धारमैया ने 2015 में जब चीफ मिनिस्टर थे कास्ट सर्वे कराया आज तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई और राजस्थान में तो उनकी सरकार है क्यों नहीं कास्ट सर्वे कराया या आज हिमाचल में उनकी सरकार है छत्तीसगढ़ में 5 साल हो गया क्यों नहीं कराया उन्होंने इसलिए देखिए ये डिपेंड करता है स्टेट्स पर नंबर वन नंबर टू एससी एसटी का तो कास्ट सर्वे हो रहा है 1951 से उसके बाद भी जो प्लानिंग होती है वो कहाँ होता है कि दलित में भी रविदास अलग हैं अलग अलग जो कम्युनिटी हैं उसके अनुसार प्लानिंग जो है वो कहाँ हो पाती है तो आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर अलग अलग कास्ट की क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी हम प्लानिंग कर पाएँ लेकिन कितना कर पाएंगे क्यों कर पाएंगे और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार लालू यादव वो जो 89 का जो दौर था वीपी सिंह का दौर मंडल पॉलिटिक्स उनको लगता है कि हम फिर मंडल पॉलिटिक्स की ओर देश को ले जाएं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी का ओबीसी में जो प्रभाव है आज नरेंद्र मोदी के पूरे देश में एक ओबीसी लीडर के नाते भी उनकी एक पहचान है तो और आज सबसे ज़्यादा एमएलए सबसे ज़्यादा फॉलोइंग ओबीसी के अंदर बीजेपी की है आज वो चाह कर भी मंडल पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते दे विल ट्राई देयर बेस्ट In the coming days in Bihar or in Eastern UP and other states, they will try to play this mandal card again. But you can't play the same card again and again. And BJP, jo hai, main kehta hu ki BJP ke paas aaj mandal bhi hai aur kamandal bhi hai. In those days, in earlier days, BJP, kamandal was with BJP And Mandal was with this regional party.
Do you want to elaborate that? How do you have Kamandal also?
No, Kamandal means jo Hindutva hai, Ram Janmabhoomi.
Yeah.
To kehne ka matlab jo nationalism ka jo card hai, wo BJP. Isliye aaj BJP ek samay tha ki BJP ki jo pehchan thi, wo upper caste, urban middle, urban class, Brahman Baniya party. But now that image is not there. To BJP isliye ye Akhilesh Yadav, Mayawati, नीतीश कुमार ये मंडल कार्ड खेलना चाहते हैं लेकिन बीजेपी इनके ट्रैप में नहीं आने वाली है और बीजेपी जो भी इस तरह कहते हैं कि हमारे पास बैकवर्ड का जो सपोर्ट बीजेपी के पास है आज रीजनल पार्टी से ज़्यादा बड़ा सपोर्ट आज हम लोगों के पास है
जिस वजह से और आप लोग बहुत ज़्यादा उन पर उस पर आप लोगों ने काम भी किया है कि जो स्कीम्स है वगैरह तो सर अगर इस पूरे सर्वे में बिहार में अगर ये पता चले क्योंकि एक आजकल में इट वुड बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच टेल्स अस कि बिहार में सर्वेस क्या है क्या कास्ट कॉम्पोजिशन है तो अगर पता चले कि अगर मेजॉरिटी 27% से बहुत ज़्यादा ओबीसी पॉपुलेशन हो करीब 50% हो तो क्या भाजपा सपोर्ट करेगी कि कोटास बढ़ाए जाए
देखिए अभी कर्नाटका में आपने देखा जो मुंबई की सरकार थी उसने कोटा इंक्रीज किया महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कोटा इंक्रीज किया हाईकोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया इसलिए देखिए ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इंदिरा शावनी केस में कि रिजर्वेशन कांट बी मोर देन 50% बट इन मैनी ऑफ द स्टेट्स इन दिस कंट्री इट इज़ एक्सीडेड 50% तो वैसे और अभी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने भी कोटा बढ़ाकर 60-70% किया है तो ये कोई 50% जो है ये कोई ऐसी रेखा नहीं है कि यू कांट एक्सीड 50% लेकिन समय आएगा तो विचार किया जाएगा लेकिन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो बढ़ाने का काम किया है अगर बिहार में भी कोई इस प्रकार की डिमांड उठेगी हम जरूर विचार करेंगे और क्यों नहीं बढ़ना चाहिए तो बढ़ने पर हम क्यों नहीं विचार करेंगे अभी जैसे बिहार के अंदर पंचायत इलेक्शंस में एंड अर्बन लोकल बॉडीज There is 20% OBC, EBC reservation. There is no OBC, EBC, extremely backward class. And 16% is SC reservation, 1% is ST reservation. Still 13% remains there, which can be given to the EBC or other communities. So agar kal is prakar ki koi baat aayegi, to BJP kyun nahi chahegi ki jo abhi to 50% ka bhi limit hum logon ne cross nahi kiya hai. To samay aane par uska bhi vichar karenge, koi bhi aisa nahi hai. कि बीजेपी इस तरह के प्रपोजल का साथ नहीं देगी ऐसा नहीं है अगर वैसी स्थिति आएगी तो हम विचार करेंगे तो और इंक्रीज करने के बारे में भी हम लोग विचार करेंगे जो
दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट सर बट डजंट इट आई नो दैट यू आर सेइंग कि हम लोग अब बस बनिया ब्राह्मण पार्टी नहीं है लेकिन वो आपकी कोर मतलब वोटर्स जो है जब 1980 में भाजपा शुरू हुई थी उसके पहले संघ तो देखा जाए तो फिर अपर कास्ट एंड द ट्रेडिंग कम्युनिटी दैट इज़ योर कोर वोट बैंक यू डोंट थिंक कि एंड आप लोगों ने वन ऑफ द की डिसीजंस जो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया वाज टू गिव 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कि बहुत सारे दलित ग्रुप्स एंड अदर पीपल क्रिटिसाइज एंड सेड यू कांट गिव देम कोटास ऑन इकोनॉमी बिकॉज दिस इज ऑन अ कास्ट थिंग इट्स अ वेरी ओल्ड डिस्क्रिमिनेशन उनको देना चाहिए BJP has acknowledged that they are an upper caste party with that 10% economic reservation. So you don't feel that that core voters will be upset agar aap OBC reservation ya fir Dalit reservation as a whole bada dein.
No, this is not correct that upper caste and the Baniya are the core voter of BJP. Now that core is changed. Now that core is enlarged. Now it comprises of all the OBCs, EBCs, Dalits, all the backwards upper caste also. And see, Congress ruled this country for 50 years and they were having alliance of Brahmins, Muslims and the Dalits. So Brahmins or Dalit, jo sabse zyada contradiction tha, unko saath mein lekar chale 50 saal jo hai. To isliye, ye sara issues nahi hai, the upper caste is also reconciled. That the reservation is a foregone conclusion. The reservation is going to stay. So the era of 80s when Mandal Commission was implemented, there was a lot of protest, noise against the reservation. Now when the reservation is being implemented, nobody cares about the reservation because they also know that the government jobs are very limited. The jobs are very limited, the government jobs. So now the upper caste hai, wo bhi reconcile kar chuke hai. इसलिए अब जब कोई भी इस तरह के रिजर्वेशन की बात आती है
तो बढ़ा भी दे तो फिर प्रॉब्लम
हाँ वो प्रॉब्लम नहीं होती है. कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका में हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ? बात अलग है कि स्टड्डा अभी छत्तीसगढ़ ने किया है,
माना जाता था.
अभी मैं एक्सक्यूज मी, छत्तीसगढ़ ने अभी किया है
बिल्कुल,
और बीजेपी ने सपोर्ट किया उसको जो है. तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं कर सकती अगर आरक्षण का कोटा किसी राज्य में बढ़ाया जाता है, आइदर इट इज बाई बीजेपी, कांग्रेस और एनी अदर पार्टी. No party can dare to oppose increase of reservation quota.
But बीच बीच में सर संघ के जो remarks आते हैं कभी कभी, वो एक shelf life होनी चाहिए.
नहीं, ऐसा कभी कोई statement नहीं आया. देखिए वो तो constitution ही कहता है कि जो political reservation है for SC ST वो केवल 10 साल के लिए होगा. लेकिन कभी भी संघ ने ये नहीं कहा है,
क्योंकि सर 2015 आपको ही याद होगा आपकी सरकार थी तब.
नहीं, वो उसका मिस इंटरप्रिटेशन जो है,
मोहन
भागवत जी ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया था, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये प्रचार किया गया. और संघ के लोगों से भी हम लोग की लगातार बातचीत होती रहती है, वो भी पूरी तरह से रिजर्वेशन के पक्ष में है. और दत्तात्रेय होशामले जी का तो बयान आया है कि जब तक सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है तब तक रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा.
वेरी इंटरेस्टिंग सर. अगर ऑपोजिशन, क्योंकि मैं दोनों पार्टीज के लोगों से बात करती रहती हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है सर 2024 इन द रन अप टू दैट, वन ऑफ द की थिंग्स, बिकॉज खरगे जी ने तो बोला है, लेकिन एंड दे हैव अ दलित प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट, बट राहुल गांधी के लोग भी अगर वो कई सारे स्टेटमेंट्स जो कर्नाटका में भी उन्होंने कहा, आई थिंक वॉट दे माइट मेक वन ऑफ द मेन एजेंडाज इज दिस कोटा इशू टू इंक्रीज रिजर्वेशन एज अ promise ahead of 2024. Do you think that could be an advantage they have over the BJP, especially because they're doing this in Bihar, where they're in coalition over there? Do you think then that might be a clever strategy?
देखिए, कांग्रेस के साथ कभी भी ओबीसी वोटर नहीं रहे.
Even during
इसका कारण ये था कि during मंडल कमीशन, because see, if you go in the background, काका कालेकर कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर आई थिंक 1953-54. तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेकर कमीशन था. उसकी रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. 77 के अंदर जब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बीपीओ मंडल कमीशन, उसकी रिपोर्ट को 10 साल तक कांग्रेस ने कोल्ड स्टोरेज में डालकर रखा दैट रिपोर्ट. सो नाइदर दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू कमीशन nor they implemented the Mandal Commission's report. It was only in the 1989, when V.P. Singh became Prime Minister, that report was implemented. Aur uska bhi Parliament ke andar Rajiv Gandhi ki speech hai, jisme unhone Mandal Commission ki report ka virodh kiya. To jo unko lagta tha Congress ko ki Brahmin, Dalit aur Muslim milakar hum is country par raj kar payenge. Aur jo OBC voter tha, wo socialist movement ka, Dr. Lohia and other, unka wo वोट बैंक के नाते काम कर रहा था. तो इसलिए कांग्रेस जो है, तो जो ओबीसी वोटर है, वो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे वर नेवर विद कांग्रेस. और अब तो कांग्रेस चाहकर भी ओबीसी वोट को अपनी तरफ नहीं ला सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीजेपी के साथ आ चुका है. इसलिए केवल प्रॉमिस कर देने से क्या होता है. पंजाब के अंदर चरणजीत चन्नी को उन्होंने कहा कि ट्रंप कार्ड है, दलित चीफ मिनिस्टर. Where is Charanjit Singh Channi? Nobody knows. He is in Canada or whatever he is doing. तो केवल आप एक symbolic कोई एक announcement कर देंगे तो वो लोगों के गले नहीं उतरता, लोग इस पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते.
I want to change track a little bit now. Since you're sir, you're not just a BJP politician, you're a senior politician. And so as a political observer, I want to ask you, what do you make of Rahul Gandhi's evolution?
देखिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा. लेकिन देखिए, अभी भी इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे जो आया, सी द गैप बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी, आई थिंक ही स्कोर 16% एंड नरेंद्र मोदी वाज मोर देन 60%. सो देर इज अ बिग गैप बिटवीन राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी. और कोई भी रीजनल लीडर जो है, वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह के इश्यूज रेज करते हैं, सारे मोदी चोर हैं, सरनेम वाला इशू, या फिर अडानी पर उन्होंने एक पूरा सेशन जो था पार्लियामेंट का वो वॉश आउट हो गया। अडानी ना, वेर इज अडानी, नोबडी स्पीक्स अबाउट अडानी। राहुल गांधी को लगता है कि नरेंद्र मोदी पर एक करप्ट पॉलिटिशियन की इमेज हम उनके बनाने का प्रयास करें, द पॉलिटिशियन हु फेवर्स द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज,
राइट।
इसलिए वो उनके हर स्पीच के अंदर इस बात को मेंशन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी गरीबों के, उनकी जो इमेज आज देश के अंदर, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, तो इसलिए आप नरेंद्र मोदी पर और कोई आरोप लगा सकते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो करप्ट हैं, ही इज इन फेवर ऑफ द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, ये सब आरोप कभी भी उन पर स्टिक नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया गरीबों के बीच में, और वो इतने वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, डाउन टू अर्थ आदमी हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से, और वो गरीबी से खुद निकल कर यहाँ तक पहुँचे, वो किसी की कृपा से नहीं पहुँचे। इसलिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। और बीजेपी तो चाहेगी कि राहुल गांधी को
प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहते हैं।
कौन पॉलिटिशियन करता है?
इस बार खड़गे ने बोल दिया है कि कांग्रेस तो दावेदार ही नहीं है पीएम पोस्ट पर।
नीतीश कुमार कहते हैं मैं भी दावेदार नहीं हूँ, ममता बनर्जी कहते मैं भी दावेदार नहीं हूँ।
आप कह रहे हैं यू आर सेइंग व्हेन पीपल से दावेदार नहीं है, एक्चुअली वो कह रहे हैं आई एम द।
अभी दो दिन पहले जो कांग्रेस ने मुंबई बैठक के पहले जो इंस्टाग्राम पर पोस्टर रिलीज किया
जी,
वो पोस्टर आपने देखा होगा
जी,
राहुल गांधी एकदम आगे हैं, बगल में सोनिया गांधी एंड खड़गे साहब, एंड अरविंद केजरीवाल इज नॉट देयर इन द पोस्टर। तो हर पॉलिटिकल पार्टी तो चाहेगी ना कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बने, बने कि ना बने लेकिन दावेदारी करे, तो वाई नॉट कांग्रेस वुड लाइक दैट राहुल गांधी शुड बी प्रोजेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अभी बात अलग है कि अलायंस के बाकी जो पार्टनर्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये अलायंस जो है बिना किसी फेस के स्टेट्स में जाएगा और हर स्टेट में कहेगा कि, बंगाल में कहेगा कि ममता बनर्जी पीएम बनेगी, ताकि बंगाली वोटर्स को हम
नेशनल प्राइड
प्राइड की हमारे स्टेट का, बिहार में कहेंगे नीतीश कुमार इनकार करेंगे, बट ऑल हिज सपोर्टर्स लीडर्स दे विल से देश का नेता कैसा हो और नीतीश कुमार जैसा हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नाम तय कर पाएंगे, इनके लिए मुश्किल काम है, ये करेंगे भी नहीं और कर भी नहीं पाएंगे।
सर वो स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी उनके लिए?
नहीं, उनके लिए, हमारे लिए तो देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वो अगर वो नहीं तय करते तो भी हमारे लिए अच्छी बात है, हम कहेंगे कि दे आर नॉट एबल टू, कि वो एक नाम ही नहीं तय कर पा रहे हैं कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, और कल गलती से बहुमत आ गया तो इतनी लड़ाई होगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो देखिए स्टेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा रहेगा।
बस सुजीत जी, आप एक बात तो मानेंगे, बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ अ फेयर पर्सन एंड यू नो वेरी वाइज कमेंटेटर, कि उस साइड अगर हाँ यहाँ पे एनडीए का न्यूमेरिकली देखें तो 28 है इंडिया अलायंस के साथ, और आप लोगों के पास 38 और 39 आई थिंक इज द एनडीए अलायंस पार्टनर्स, लेकिन बड़े पार्टीज माने जाने माने लोग जो हैं और कई सारे ऑपोजिशन की तरफ है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एलाइज है जो लोग पहचानते भी नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं, हम भी उनके बारे में ज्यादा नहीं है, ये तो आप मानेंगे कि पल्ला उनका भारी है?
कैसे पल्ला भारी उनका? देखिए उनको चार ही राज्य जहाँ पर अलायंस क्रूशियल है, इन बिहार ऑलरेडी देयर इज अलायंस,
राइट,
तमिलनाडु में अलायंस है,
राइट,
कर्नाटका में अलायंस है, बाकी मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में
स्ट्रेट फाइट,
डायरेक्ट स्ट्रेट फाइट है। इश्यूज कहाँ पर है? बंगाल, पंजाब, दिल्ली एंड केरला, दीज आर ओनली द फोर स्टेट्स। क्या केरला के अंदर कांग्रेस और सीपीएम के बीच कोई अलायंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस में कोई अलायंस हो सकता है? अभी 5 सितंबर को बाई इलेक्शन हो रहा है बंगाल के अंदर, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ रही है और ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही है। दिल्ली और पंजाब में क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का कोई अलायंस हो सकता है? इन चार स्टेट्स को छोड़ दीजिए बात, अब बाकी सब जगह तो ऑलरेडी अलायंस है, महाराष्ट्र में इज अलायंस इज देयर,
बट हमने कभी सोचा भी नहीं था सर कि कांग्रेस आके आपके फायदे वाले लॉ में वो वोट करेंगे उनके साथ, लेकिन वो हो गया, तो क्या मालूम।
मान लीजिए कि अगर करते भी,
हाँ, फिर
देखिए उससे ये केवल नेताओं के हाथ मिलाने से जनता हाथ नहीं मिलाती।
सही बात।
ऐसा नहीं कि अगर आप 10 लोग मिल गए तो आपके सारे वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। लोग ये देखेंगे कि कौन है जो देश को लीड कर सकता है, लोगों का भरोसा किस पर है, किसने 10 साल अच्छा काम किया, इश्यूज ये रहने वाले हैं। अब वो जमाना चला गया कि एक समय में HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, 6 महीने की सरकार, 8 महीने की सरकार, लोगों ने दौर देखा है। इसलिए लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसी सरकार देखना चाहते हैं और लोगों ने उसको देखा है। इसलिए लोग इस तरह के अगर ये अलायंस कर भी लेते, मान लीजिए अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस हो, जैसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए लोकसभा इलेक्शंस के इश्यूज अलग हैं और विधानसभा के इश्यूज अलग हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में BJP चुनाव हार गई और 4 महीने के बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए, BJP स्वीप कर गई। तो वोटर बहुत जागरूक है, उसको ये मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना और लोकसभा में किसको वोट देना। तो इसलिए भारत के जो वोटर्स हैं उन पर भरोसा रखिए। इसलिए लाख अगर ये अलायंस कर भी ले, और वो नहीं करेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो जमीन है वो कांग्रेस पर डिपेंड करती है। कांग्रेस कमज़ोर होगी तब अरविंद केजरीवाल ताकतवर होंगे, और अरविंद केजरीवाल 2024 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को वीकेंड करना, नहीं तो कल ही उनके प्रवक्ता का बयान आया कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि 2 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं उनके फॉलोअर्स चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने। इसलिए देखिए इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसे देश का इतिहास रहा है 70 साल का, कि ग्रैंड अलायंस बना 1991 के अंदर, फेल कर गया, केवल 77 में, और वो भी जनता BJP कांग्रेस हो, लोकदल मर्ज कर गई, इमरजेंसी का बैकग्राउंड था, तब जाकर कांग्रेस को डिसलॉज कर पाए।
बट ये आप कह रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि 2019 में अगर ये होता कि ये अलायंस आती, तब लोगों को लगता कि मोदी सरकार 5 साल थी, वी विल, इट्स स्टेबल, वील वोट फॉर इट। वुड यू अग्री सर दैट इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच, इस समय इन्फ्लेशन, ये टमाटर वाला जो प्राइस है, लोग चुनाव में जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स, मैं आपके भाजपा के किसी मंत्री जी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे या व्हाट इज वरिंग अस इज जॉब लॉसेस इज अ प्रॉब्लम, जॉब जनरेशन वी हैव नॉट बीन एबल टू डू सो मच एंड इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम। सो डू यू थिंक द टाइमिंग ऑफ इट एंड परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है पॉलिटिक्स में, कि इस समय एक अल्टरनेटिव का लोग सोच सकते हैं जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकली उनको बुरा लग रहा है। मोदी जी की बात नहीं है, मोदी जी 10 साल थे और उनकी आपने कहा लोकप्रियता बिल्कुल है, लेकिन बिकॉज पीपल आर वर्स ऑफ, एंड एक तरीके से भाजपा सरकार का भी यही मानना है, विच इज वाई उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के दाम। तो उस इकोनॉमिक रीजंस के वजह लोग अल्टरनेटिव ढूंढे, क्या ये हो सकता है?
नहीं होगा। देखिए 2014 के अंदर जब UPA की गवर्नमेंट थी तो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन की क्या स्थिति थी, और ये जो वेजिटेबल्स, टमाटर, ओनियन,
सर दैट इज द रीजन UPA गॉट वोटेड आउट,
ठीक है ना। लेकिन इससे देखिए ये बहुत एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। ये लास्ट फेज में मनमोहन सिंह पूरी तरह से एकदम डमी प्राइम मिनिस्टर हो गए थे जो है, तो ये एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। अभी टमाटर की क्राइसिस आई, देखिए वेजिटेबल ओनियन, वेजिटेबल टमाटर, ये टेम्प्रेरी फिनोमिना है, और आप देखेंगे 1 महीने के भीतर वो, और वो प्राइस राइज का इशू खत्म हो जाएगा। जहाँ तक डीजल, पेट्रोल और बाकी का है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, और मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि UK, अमेरिका, सब जगह 40 ईयर्स में जितना इन्फ्लेशन नहीं था उससे बड़ा इन्फ्लेशन आज अमेरिका और UK, दुनिया के बाकी देशों को गुजरना पड़ा है। और भारत सरकार ने जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया है, अभी आप देखेंगे राइस, वीट, पल्सेस, तो इतनी प्रोएक्टिव है ये सरकार कि आप आगे आने वाले देखेंगे एडिबल ऑयल, पल्सेस और इन राइस और वीट का दाम ना बढ़े, इसके लिए पूरी तरह से सरकार लगी है।
क्योंकि बारिश भी कम हुई है ना?
नहीं, बारिश वगैरह कम हुई है, लेकिन अभी सितंबर में हो सकता है कि कॉम्पनसेट हो जाए। लेकिन वो इशू नहीं रहेगा, चुनाव आते तब देखेंगे कि प्राइस अभी 7.44 जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इंडेक्स था, तो अगले महीनों के अंदर आप देखेंगे काफ़ी वो नीचे आएगा। तो इसलिए मैं महंगाई, ऐसे तो हर चुनाव में महंगाई एक मुद्दा रहता है, अब मैंने तो 8-10 चुनाव देखा होगा अभी तक, हर चुनाव का एक मुद्दा हर सर्वे में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, दीज आर इश्यूज। लेकिन लोग केवल उसी पर वोट नहीं करते, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाए तब वो इशू बन सकता है, अदरवाइज हर चुनाव के इश्यूज रहेंगे। लेकिन वोटर किन्हीं इन्हीं 2-3 इश्यूज पर केवल डिसीजन नहीं लेता है, बास्केट ऑफ इश्यूज हैं जिस पर वो बैठकर कोई निर्णय करता है।
जो हमारे सुनने वाले हैं उनको, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों शायद ये भी नहीं, कि यू वर ऑलवेज कंसिडर्ड सर टू बी द ग्लू इन द बीजेपी JDU अलायंस इन बिहार, एंड यू नो ऑल पोलिटिकल ऑब्जर्वर्स टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट यू वर वेरी क्लोज टू नीतीश कुमार। नाउ दे नीतीश कुमार नाउ कॉमेंट्स एंड सेज कि शायद यू हैव टू डू वेल इन योर पार्टी एंड दैट्स व्हाई यू अटैक हिम मच मोर। सो डू यू वांट टू गिव अस एन इनसाइट इनटू हिम?
देखिए, हम लोग जहाँ भी काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। जब नीतीश जी के साथ थे, अलायंस चले, इसके लिए ईमानदारी से मैंने काम किया, और जिस दिन अलायंस ब्रेक किया, 24 घंटा भी नहीं लगा, और जिस ईमानदारी से उन पर अटैक किया और कर रहे हैं, उसमें पार्टी का लाइन था कि साथ देना, इसलिए हम लोगों ने साथ दिया। आज पार्टी से कोई व्यक्तिगत कोई रिश्ता नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ता तो लालू प्रसाद से भी है, ही वॉज माई प्रेजिडेंट, आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, तो आई वर्क विद लालू यादव नीतीश, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन वो एक अलग पार्टी में है, और साथ में थे, इसलिए अलायंस को बढ़िया से चलाया हम लोगों ने। बिहार के अंदर 13 साल सरकार चली, NDA की सरकार चली, जिसमें मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, तो नीतीश जी को पूरा सपोर्ट करना ताकि डिलीवर हो, काम हो जनता का, और अलायंस ठीक से चले। तो इसलिए कोई व्यक्तिगत मित्रता का विषय नहीं है, सवाल है कि आज पार्टी ने डिसाइड किया विरोध करने का, तो 24 घंटे के भीतर हम लोग सड़क पर आ गए, स्टेटमेंट्स देना, बोलना, उनके खिलाफ में बोल रहे हैं।
क्या ये भी एक्चुअली अ लिटिल ऑफ दैट, बट क्या ये भी एक पॉलिटिक्स कैसे बदल रहा है उसका एक साइन है कि पहले हम लोग देखते थे ऑपोजिशन के नेता, मतलब अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन वो उनके घर में आना जाना था लंच, या वो एक साथ पार्लियामेंट में, सब जानते हैं कि अरुण जी के यहाँ पे कांग्रेस के कई लोग, वो जो वो लोग कई बार एक साथ सारे पार्टी के लोग बैठ के लंच वगैरह खाते थे। वो पिछले आई थिंक 9-10 साल में ये जो न्यू NDA 2 का ये है वो बहुत कम हो गया है, MPs कहते हैं।
नहीं, NDA से इसका संबंध नहीं है, ये डिपेंड करता है आदमी, लोगों पर। अब अरुण जेटली का जो टेम्परामेंट था, नेचर था, वो तो 3-4 साल पहले गए हैं, ही वॉज इन NDA, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ NDA। ये डिपेंड करता आदमी के नेचर पर जो है। कुछ लोग हैं, मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ कि सभी पार्टी के लोगों से उनके बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं, गपशप करना, उठना बैठना सेंट्रल हॉल में। कुछ लोग हैं जिनका वो बहुत दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ बहुत क्लोज रिलेशन बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी के नेचर टेम्परामेंट पर।
तो सर अभी है कोई, मतलब जैसे खड़गे जी हैं LOP, आप भी राज्यसभा में हैं, वो भी है, तो ऐसा कोई आप कहेंगे कि उनकी बातचीत होती है आउटसाइड द हाउस मंत्रियों की वगैरह?
ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस सर्किल में नहीं हूँ, इसे मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं।
आपको ये पार्लियामेंट की अगर बात करें तो एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो गई है कि वुड यू एक्सेप्ट कि लोग ये सस्पेंशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं? ऑपोजिशन का कहना है कि देर इज लेस टॉलरेंस इन द हाउस एंड वी हैव सीन सो मेनी ऑपोजिशन लीडर्स गेट सस्पेंडेड, राघव चड्ढा, संजय सिंह तो पहले ही हो गए थे, अभी अधीर चौधरी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा, उनको भी कर दिया था, फिर इमीडिएटली वापस ले लिया, लेकिन थोड़ा सा जीरो टॉलरेंस हो गया, ये क्या कहेंगे?
ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, ऑपोजिशन जिस तरह से डिस्टर्ब कर रही है, डिसरप्ट कर रही है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, एक सेशन पूरा अडानी मुद्दे पर चला गया, लास्ट सेशन पूरा का पूरा मणिपुर पे चला गया, भाई वाई आर इंसिस्टिंग दैट PM शुड आंसर रिगार्डिंग मणिपुर? भाई जो वो डिपार्टमेंट HM का है, अगर या लोकसभा में आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, अब दोनों काम कर सकते थे, मणिपुर पर भी डिबेट कराए, एक्सेप्ट कर लेते और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाते आप। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सब्जेक्ट पर नहीं होता है, इट इज़ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन नो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द इंटायर गैमेट ऑफ इश्यूज कैन बी डिस्कस ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो मैं अगर ऑपोजिशन में होता, मान लीजिए, तो मैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं, मणिपुर पर ठीक है, दो दिन तीन दिन हम इंसिस्ट किया, लेकिन मणिपुर पर अलग से डिबेट जो है, और लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि वोटिंग उस पर होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर, और जिस 267 के बारे में इंसिस्ट कर रहे थे कोई उसका लॉजिक नहीं था। तो इसलिए डिबेट अगर होती मणिपुर पर, आपको भी बोलने का मौका मिलता, सरकार जवाब देती, और होम मिनिस्टर का वो पोर्टफोलियो उनका डिपार्टमेंट है, लेकिन आप ये कहेंगे कि पीएम ही जवाब दें, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। आपने पूरा एक सेशन वॉश आउट कर दिया जो है। तो इसलिए जो ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी रही, और हंगामे में बिल तो पास होते चले गए, तो आपको फ़ायदा क्या मिला? आप इतना डिबेट ना करा पाए, ना किसी बिल पर डिस्कशन हुआ। आखिर गवर्नमेंट तो अपना बिजनेस करेगी जो है। तो जो ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है बहुत इमैच्योर्ड स्ट्रेटजी। हम लोग भी 30 साल 35 साल तक स्टेट्स के अंदर काम किया, हम लोगों ने कभी इस तरह से पूरे 15 दिन 20 दिन तक किसी एक इशू पर कभी असेंबली को डिस्टर्ब नहीं करते थे। एक दिन किया, दो दिन किया, एक सेशन किया, फिर डिबेट एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन है ऑपोजिशन के अंदर। इसलिए आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस मैंने एक दूसरे को से आगे बढ़कर दिखाना कि हम ज़्यादा एंटी नरेंद्र मोदी हैं, इस चक्कर में उन लोगों ने पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग्स को और डिसरप्ट कर दिया।
सुशील जी, आपको नहीं लगता है कि दिस वाज सच अ सीरियस इशू दैट इट were they so wrong in demanding that the PM speak on
why,
because
why
we've
demanding?
Never seen these kind of pictures.
Why you're demanding? We are demanding if be niyam kya hai? Be aapne ek baar do baar demand kiya, be HM bhi to jawab de sakte the. To is par debate na ho aur Manipur par BJP ko dock mein khade rakhe. Iske liye baar PM ka naam le rahe hain. To ye to aap bhi parliamentary proceeding kya hai? Process kya hai? कि जिस डिपार्टमेंट पर डिबेट होगी उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर है, वो उसका रिप्लाई देगा। जो HM 3 दिन वहाँ जाकर रहे मणिपुर के बारे में, और जो उनके स्टेट फाइनेंस स्टेट
HM
मिनिस्टर जो है, और उन्होंने जब पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दिया तो पूरा डिटेल जो है, तो आपने तो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, आप एक अपॉर्चुनिटी आपने आप लूज कर गए मणिपुर पर डिबेट का।
सुशील जी, some people would argue that it was a very, I mean, we at least heard the PM speak about Manipur, and you know, it's an extraordinary situation which needed extraordinary measures. You don't agree with that?
No, an extraordinary situation hai, lekin aap,
which is why they were insisting on PM.
Why you're insisting? You want answer?
Because it's an extraordinary situation.
See, iske pehle bhi desh ke andar नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटी
हैं। इस तरीके तो हमने
नहीं, इससे भी बड़ी घटनाएं घटी हैं। HM ने डिटेल घटनाओं का जिक्र किया, कहाँ प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिप्लाई किया, तो इसलिए ऐसा गृह मंत्री ने भी किया, राज्य मंत्री ने जवाब दे दिया। अभी मुझे याद नहीं उस दिन अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच में बताया इसके पहले मिजोरम में क्या हुआ, बाकी में क्या हुआ, और डिबेट का रिप्लाई किसने दिया। इसलिए डिबेट का कौन रिप्लाई करेगा? इट इज़ नॉट दैट एनी जूनियर मिनिस्टर इज गोइंग टू रिप्लाई, इट इज़ द होम मिनिस्टर। तो इसलिए आप जब डिबेट नहीं चाहते हैं तो एक राइडर लगा देते हैं ऐसा कि PM जवाब देंगे तभी मैं डिबेट में भाग लेंगे, ये कोई इश्यू है क्या? तो दिस शोज देयर चाइल्डिशनेस एंड देव इट इज़ नॉट सर्व देयर पर्पज ऑल्सो।
सुशील मोदी जी, आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर हेड ऑफ द लॉ कमिटी एंड ऑल द बिग टॉक एंड बिग एजेंडा हेड ऑफ द लॉ कमिटी वॉज द UCC. There was one hearing about and all. Is Uniform Civil Code, which is the Bharatiya Janata Party's only one of the key promises that the party is one of the, you know, founding foundations of the party, and the only one which has not been delivered till now, is that looking very, very, you know, it's something that's evident right now and, you know, is imminent, I beg your pardon, soon?
नहीं, मैं समझ नहीं पाया
कि अब क्या कि ये जो भाजपा का जो प्रॉमिस है UCC का, ये लग रहा है कि ये कुछ ही दिनों में, बस समय की बात है कि भाजपा विल डिलीवर।
मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट कब क्या डिसाइड करती है, इसके बारे में मैं नहीं कर सकता, लेकिन डिबेट तो एक शुरू हो गई है, एक डिबेट शुरू हो गई। लॉ कमीशन के पास 70 लाख से ज़्यादा सुझाव आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, उन पर वो वर्कआउट करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डिबेट तो शुरू हो गई इस पर। और देखिए, आज न कल बीजेपी की सरकार इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेगी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा या अगली सरकार में होगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये तो इट इज़ फॉर द PM एंड द गवर्नमेंट टू डिसाइड। लेकिन एक डिबेट प्रारंभ हो गई है, और मैं देख रहा हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इशू पर जो बीजेपी के विरोधी भी लोग हैं, वो भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट के साथ है। क्योंकि आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब पॉलीगेमी का कौन सपोर्ट कर सकता है? आज के समय में कोई पॉलीगेमी का, डाइवोर्स के लिए कॉमन ये बायलॉज बनना चाहिए डाइवोर्स के लिए, डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस की बात है, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के प्रति जिसमें भेदभाव दिखाई पड़ता है। और जब दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू है, तो देश के अंदर एक कुछ मुल्ला मौलवियों के चक्कर के अंदर अगर इसका विरोध होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उचित है। और आज न कल ये जरूर इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट होगा।
सो दैट वुड बेसिकली द होल थिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इज कि सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो यू डोंट थिंक दैट रॉब्स,
दिस इज नॉट सेलिब्रेटिंग महिलाओं के साथ भेदभाव हो,
दैट इज वन एस्पेक्ट, देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स,
दिस इज द मेन एस्पेक्ट। भाई डाइवर्सिटी तो है इस देश के अंदर, कहाँ डाइवर्सिटी को खत्म करने की बात हो रही है? भी कस्टम इज वन थिंग, रिचुअल इज वन थिंग, सो नोबडी इज गोइंग टू टच योर कस्टम्स और रिचुअल्स। शादी करने का तरीका क्या होगा, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पुरुष की एक ही पत्नी होगी, इस पर तो सहमति होनी चाहिए ना। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि, और देखिए मैं ये भी बता दूं कि एक समय में हिंदूज में भी पॉलीगेमी था। जब हिंदू कोड बिल जब आया, तो उसका भारी विरोध हुआ, क्योंकि उस समय हिंदू समाज में भी और पॉलीगेमी बहुत प्रचलित थी जो है। इसलिए मैंने कहा कि एक समय बदल रहा है, इसलिए डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं के साथ आप भेदभाव करें। अगर उनको ये डाइवोर्स का मेंटेनेंस मिलना चाहिए, इस पर क्या आपत्ति हो सकती है, इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? एज बराबर, एज लड़कियों की एज और लड़कों की एज हर रिलीजन के लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि जो इस्लाम को मानने वाले वहाँ 15 साल में लड़की की शादी हो सकती है, और हिंदुओं के अंदर, बाकी क्रिश्चियंस के अंदर इट विल बी 18? ऐसा क्यों जो है? तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कि जो बीजेपी के विरोध में भी जो लोग रहने वाले लोग हैं, उनको भी खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं है।
बट आपने खुद कहा है कि ट्राइब्स जो है उनको एक्सेप्शन दिया जाए।
मैंने इसलिए कहा है कि देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की स्थिति अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में 371 नागालैंड और मिजोरम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि उनके मैरिज, उनके जो लॉज हैं, उनके जो फैमिली लॉज हैं, उनके बारे में पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती भी है, तो जब तक वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई नहीं करती है, तब तक वो वहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, देश के बाकी हिस्सों में भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो हजारों वर्षों से मेन स्ट्रीम से अलग रहे हैं। उनका अपना अलग कल्चर रहा है, उनके अलग ट्रेडिशंस रहे हैं, क्लैन हैं, ट्राइब्स हैं। मेघालय में आप जाइए तो एक ही जिले के अंदर इतने जो हैं, तो उसको टच नहीं करना चाहिए, और हमको ट्राइबल्स को भी और कुछ वर्षों के लिए छोड़ देना चाहिए जब तक कि वैसी स्थिति नहीं बनती है। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, नागालैंड मिजोरम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, शेड्यूल 5 एरिया एंड शेड्यूल 6, उसके अंदर ट्राइबल एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी हुई है। तो इसलिए जो ट्राइबल एरिया है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखना चाहिए, उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए।
इस पे लेकिन आप लोगों को पॉलिटिकल से मतलब सपोर्ट मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी ना, क्योंकि जगन रेड्डी जब प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, तो अपेरेंटली उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि इस बिल पे हम लोग आपके लिए वोट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, देखिए बाकी क्या होता है, लेकिन बीजेपी के पास इतनी मेजोरिटी है कि जब भी बीजेपी तय करेगी, हम इसको लोकसभा से तो पारित करा ही लेंगे, राज्यसभा से भी इसको पारित कराएंगे।
सुशील जी, आपका फाइनल क्वेश्चन, आप क्या कहेंगे, व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट विल प्ले आउट ऑन पीपल्स माइंड इन 2024 इलेक्शंस?
नरेंद्र मोदी। देखिए, एक ही इशू रहने वाला है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एंड यस्टरडे आई वाज रीडिंग एन इंटरव्यू ऑफ रुचिर शर्मा,
यस,
ही सेड दैट इट विल बी नरेंद्र मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से काम किया है, गवर्नेंस उनकी जो सबसे बड़ी जो USP है, दैट इज गवर्नेंस। हर इशू को हेड ऑन उसको फेस करना, चाहे वो कोरोना हो, चाहे यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, और ईमानदार हैं और प्रयास कर रहे हैं चीज़ों का समाधान करने के लिए। तो इसलिए नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा अगले चुनाव के अंदर। और मुझे नहीं लगता कोई अलायंस बन जाए, कुछ भी हो जाए, कोई नरेंद्र मोदी को यानी तीसरी बार बनने से रोक पाएगा, सर मुझे तो 0.1% भी कहीं से दूर दूर तक नहीं लगता।
और क्या नंबर होगा सर आपका?
नहीं, मैं नंबर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, चूंकि नंबर के बारे में कहना बहुत कठिन काम है। लेकिन ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर।
ओके, नंबर मत बोलिए, 303 से घटेगा?
नहीं, देखिए, मैं कोई नंबर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी विल हैव इट्स ओन मेजॉरिटी, मैं इतना ही कहूंगा।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स एंड फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड।
This episode of First Voice Last Word was produced by Deepthi Ahuja. The audio editor is Amrinder Singh. This episode was hosted and written by Sunetra Chaudhary, National Political Editor at Hindustan Times.
To stay updated on this podcast, follow us at HD Smartcast on all the major social media platforms. To listen to more such podcasts, log on to www.hdsmartcast.com.